ओम शांति। जब हम निर्माणता के गुण की बात करते हैं तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो है नम्रता, स्वभाव में नम्रता हो, और दूसरा है नव निर्माण करना। जहां नम्रता है वहां महानता भी है। अगर कोई व्यक्ति कुशल है, योग्य है, विशेषताओं से संपन्न है और फिर भी अगर वो नम्र है तो वो सचमुच महानता मानी जाती है। जो नम्र होता है वो झुकता है, उसको अपना अहम नहीं होता है कि मैं क्यों झुकूं, अगर कोई गलती हुई है तो उसे मानते भी हैं, अगर माफी मांगने की जरूरत है तो माफी भी मांग लेते हैं, और झुकना ही दूसरों को झुकाना है। जैसे मानो कोई किसी के चरण छूने के लिए झुकता है तो निश्चित है कि सामने वाला उसे झुककर ऊपर उठाता है, तो वही फिर झुकाने के भी निमित्त बन जाता है। और जहां नम्रता है वहां हम सदा ही दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को हम स्नेह देते हैं, खुशी देते हैं, यानी दूसरों के लिए जीवन जीना एक नम्र व्यक्ति की विशेषता होती है। तो नम्रता कोई कमजोरी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि यदि हम नम्र रहेंगे तो लोग हमें दबाएंगे, लेकिन नम्रता सोमान के साथ हो, जो दादी जी में हमने देखा कि जितनी नम्रता थी, जितना निर्माण स्वभाव था दादी का, उतना ही सोमान भी था। वो नशा, वो फकुर उनके चेहरे से दिखाई देता था, और खासकर जब दादी जी मुरली सुनाते थे तब वो हम स्पष्ट देखते थे कि स्वयं भगवान पर भी जैसे उनका अधिकार है, भगवान को भी उन्होंने अपने स्नेह में बांधा हुआ है। मुझे याद है एक बार जब ओम शांति भवन में शिवरात्रि का झंडा लहराया गया तो उस समय झंडा लहराने के बाद दादी जी ने अचानक गुलजार दादी को कहा कि आप बाबा के पास जाओ और बाबा से इस शिवरात्रि का संदेश आपको लाकर सुनाना है। और उसी समय सब खड़े होते हैं झंडारोहण के समय, तो लेकिन उसी समय दादी को कुर्सी दी गई, गुलजार दादी बैठे और बाबा के पास गए। बाबा ने खींचा उनको और वो संदेश लेकर आए और संदेश सुनाया गया। ऐसे ही जब यज्ञ में पहली कार आई तो भी उन्होंने अधिकार से कहा कि बाबा इस कार का उद्घाटन करें, और गुलजार दादी गई, बाबा आए और बाबा ने उद्घाटन किया। और ऐसे कितनी ही बार दादी ने बाबा को अधिकार से बुलाया। वो छोटों को भी जो स्नेह देते थे वो सम्मान का स्नेह देते थे, और बिना किसी भेदभाव के, वो किसी धर्म का है, जाति का है, देश का है, भाषा का है, एक जैसे निस्वार्थ स्नेह हम कहते हैं वो दादी का था। उसमें कोई भेदभाव नहीं था कि इसको देना है इसको नहीं देना है। एक घटना या उनके जीवन की जो हम नजदीक से देखते थे, तो मैं देखती थी कि मोहिनी दीदी और दादी जी एक ही कमरे में थे और दोनों को अपने शरीर की तबीयत के अनुसार, जैसे मोहिनी दीदी को पंखा तेज चाहिए होता था और दादी जी को पंखा कम चाहिए होता था, तो वो कभी भी उनको नहीं कहेंगे कि, क्योंकि बड़े हैं तो कह सकते हैं कि जितना मुझे चाहिए उस अनुसार ही रखो, पर वो कहेंगे तुमको जितना चाहिए तुम चलाओ, मैं ओढ़कर सो जाऊंगी। कई बार उनको कुछ दवाई वगैरह दर्द के लिए यूज करनी होती थी उसमें कुछ स्मेल है, दादी कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। यानी छोटों को भी सुख देने का भाव उनका रहता था। और जैसे बाबा कहते हैं, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, बच्चों के लिए मैं सेवाधारी बनकर आया हूं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है लेकिन बच्चों को नमस्ते करते हैं, या मालिकम सलाम कहते हैं, बालक सो मालिक हमें कहते हैं। तो दादी जी का भी हमने वो सेवाधारी स्वरूप देखा। मैं जब पांडव भवन में सेवा के लिए आई थी तब हमें जो रहने का स्थान मिला था वो छोटे हॉल के ऊपर के कमरे थे, वहां रहने को मिला था। और दादी का कमरा बिल्कुल सामने था, हिस्ट्री हॉल के पीछे। तो मैं देखती थी सुबह मुरली के पहले कुछ महीने दादी के कमरे में जाती थी और रात को भी कुछ महीने जाते थे। तो हम तो नए थे उस समय, तो थोड़ा समय देखते थे, लेकिन एक बार मैं हिम्मत करके उनके साथ चली गई अंदर। तो मैंने देखा कि मुरली के पहले दादी जी तो तैयार हो रहे हैं और सब बहनें उनसे मिल रही हैं, बात कर रही हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दादी का तो ये पर्सनल टाइम है और ऐसे टाइम में कोई किसी को मिलता है। पर दादी को बिल्कुल भी ये भान नहीं कि ये मेरे से इस टाइम कैसे मिलने आ गए, कैसे मेरे से पूछ रहे हैं। और रात के समय में सोने के पहले वो मुरली जरूर पढ़ते थे, हम सब जानते हैं। उस समय भी जो बहनें आ जाती थी दादी उनसे बात करते थे, मिलते थे, कुछ सुनाते भी थे अपनी तरफ से। तो जैसे अपना व्यक्तिगत समय है ही नहीं, पूरा समय सेवा के लिए है। मैं दादी जी को क्लास से लेकर के आती थी तो पांडव भवन के आंगन में दादी बैठते थे। दादी को धूप में बैठना पसंद था और सिंपल सी कुर्सी रख देते थे, दादी बैठ जाती थी उस पर। और फिर ओपन, किसी को भी मिलना है आराम से दादी से मिल सकते हैं, दादी से कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। लगता ही नहीं था कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मुखिया हैं, बिल्कुल जैसे परिवार का कोई बड़ा बैठा है और सब उनसे सहज रूप से मिल रहे हैं। ऐसा कोई वो रौब या रुहाब हो उनका, जैसे हम देखते हैं दुनिया में गुरु होते हैं या जो भी संत महात्मा होते हैं उनका कोई ना कोई अपना एक रुहाब होता है और उस अनुसार ही लोग उनसे मिल सकते हैं। अगर उनके दर्शन करने हैं तो एक ऑफिशियल टाइम होता है और उनसे अपॉइंटमेंट लेना होता है। लेकिन दादी जी बिल्कुल सहज भाव से सबसे मिलते थे। फिर मैं कई बार ये भी देखती थी कि दादी क्लास के बाद चक्र लगाते थे कोई कोई डिपार्टमेंट में, और वहां डिपार्टमेंट्स में जाकर के खुद पूछते थे उनसे, उनको कुछ चाहिए, उनकी कोई समस्या है। और अगर है कोई ऐसी बात सामने आती थी तो उसी समय निर्णय दे देते थे। यानी उनको आकर के दादी के पास पूछना पड़े ऐसा नहीं होता था। तो ये सब उनकी निर्माणता थी, उनका समय और शक्ति की बचत होती थी इसमें। कभी भी निर्णय लेने में बहुत देरी दादी मैंने नहीं देखा वो करते थे। और ऐसे अपने निर्णय के अनुसार ही सबको चलाना है ऐसा भी नहीं था उनको कि मैं संस्था की हेड हूं तो मैंने जो निर्णय ले लिया वो तो सबको मानना ही है। वैसे मानते ही थे सब, लेकिन दादी सभी के विचार लेते थे, सभी के राय को सम्मान देते थे। और हम देखते थे कि दादी मीटिंग बुलाते थे मधुबन वालों की, जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते थे मधुबन में या कोई मधुबन में ऐसी समस्या है तो हर 15 दिन में एक महीने में सभी मधुबन वालों के साथ दादी बैठती थी और सबके सामने दादी, जैसे दादी हमेशा मैं शब्द का प्रयोग कभी नहीं करती थी, ये दादी की राय है, दादी का विचार है, फिर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, फिर सबकी राय के अनुसार फिर दादी फाइनल डिसीजन देते थे। अभी भी हम देखते हैं पूरे जोन्स की हमारी एनुअल मीटिंग होती है, पूरे साल भर के जो प्रोग्राम होते हैं वो दादी जी का बनाया हुआ ही सिस्टम है। और ऐसे ही एक बार जब एनुअल मीटिंग चल रही थी तो चन्ना रेड्डी जी जो राजस्थान के उस समय गवर्नर थे वो आए हुए थे गर्मियों में एक महीने के लिए। राजस्थान के गवर्नर वहां माउंट आबू में हिल स्टेशन पर आकर रहते हैं, तो ऐसे वो आकर रहे हुए थे। तो मीटिंग के कार्यक्रम में उनका आना हुआ और उस समय अपनी इतनी समर्पित बहने, क्योंकि सभी वरिष्ठ आते हैं उसके अंदर, करीब 500-600 बहने होंगी ओम शांति भवन में जो मीटिंग में आए हुए थे, कुछ भाई भी थे। तो उस सभा में वो आए और वो जब उन्होंने देखा कि ये तो सब दादी जी के समान ही हैं, दादी ने जैसे इनको अपने जैसा ही बना दिया है, और क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो ज्ञान सुनते थे जब उनको संस्था के बारे में, संस्था के लक्ष्य उद्देश्य के बारे में बताया गया था। तो फिर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कभी भी किसी गुरु को मैंने अपने समान बनाते हुए नहीं देखा, उनके शिष्य होते हैं, चेले होते हैं, लेकिन वो अपने ही समान शिक्षक तैयार कर दें ऐसा नहीं देखा। और अगर दादी जी आपने इतने सब तैयार किए हैं, बहनों को अपने समान बना दिया है, तो फिर जो आप कहते हैं मैं सतयुग लाने वाली हूं या इस दुनिया में सतयुग की स्थापना होनी है, तो निश्चित तौर पर सतयुग की स्थापना होगी। तो इतना प्रभाव पड़ता था जो दादी जी जिस तरह से कार्य करते थे। दादी जी का जो प्रशासन हमने देखा वो भी स्नेह का प्रशासन था। ऐसे कहेंगे कि लव ही जैसे लॉ था, कभी किसी को रॉफ से बात करते हुए या किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए हमने नहीं देखा। अब इतना बड़ा संगठन है, अलग अलग संस्कारों की आत्माएं हैं, गलती भी करते हैं, सब भूल भी करते हैं, तो उनका अधिकार बनता था कि वो कह सकते थे, लेकिन फिर भी दादी सबको स्नेह से ही समझाते थे। कोई भी बात देनी हो शिक्षा सावधानी नहीं देते थे ऐसा नहीं, लेकिन स्नेह से। और इसी कारण हम देखते थे कि जो भी मधुबन के भाई बहने थे, जैसे कि दादी उनके दिल पर राज करते थे। अगर आधी रात को भी दादी ने बुलाकर कुछ कह दिया, और कितना भी मुश्किल काम है सदा ही हाँ जी कहेंगे। जब शांतिवन का मेला हुआ पहला जो टेंट में हुआ, तब शांतिवन बना नहीं था, लेकिन हजारों की संख्या में भाई बहनों को एकत्रित करके बाबा से मिलाना है, और उसके लिए कितना काम, इतने टेंट बनाने, इतने सभी सब कितने प्रबंध करने होते हैं, लेकिन दादी ने सबको जो जिम्मेवारी दी, लोगों ने रात रात भर जाग करके भी वो सब सेवाएं की। दादी ने कहा है माना करना ही है चाहे जो भी हो जाए। और जैसे दादी की सेवाओं के प्रति बहुत ऊंची सोच होती थी, बड़ी सोच होती थी, छोटे स्तर पर दादी नहीं सोचते थे, ऐसे ही लाख लाख के प्रोग्राम दादी जी ने करवाए। और उस समय भी वो असंभव था कि लाख की सभा हो जाए, 1,000-2,000 आ जाते थे तब उतना तो ठीक है, लेकिन लाख की सभा इकट्ठी हो जाए वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दादी ने कहा है, दादी ने कहा है माना बाबा ने कहा है, दादी को बाबा ने संकल्प दिया है, तो सभी जोन वालों ने उस बात के लिए हिम्मत की। और फिर एक दो शहर तो क्या, कुछ शहर तो क्या, भारत के जितने भी बड़े शहर माने जाते हैं सभी शहरों में वो लाख लाख के प्रोग्राम हुए। और जैसे जो नम्र व्यक्ति होता है वो सबको स्वीकार करता है, यानी अगर उसके सामने किसी की प्रशंसा की जा रही है तो जिसको अहम होगा उसे ईर्ष्या हो जाएगी, वो शायद उसे स्वीकार नहीं कर पाते और उनकी कोई कमी सुनाने लगते हैं। पर दादी जी को हमने देखा, जब भारत में सेवाएं शुरू हुई तो उस समय जो भाई बहन निकले, पढ़े लिखे थे वो और योग्य भी थे, अच्छे भाषण भी करते थे, ज्ञान को अच्छी रीति से समझा सकते थे, शास्त्रों की बातें भी जानते थे, तो दादी के सामने उनकी प्रशंसा होती थी कि दादी ये ऐसे हैं ऐसे हैं। तो हमने देखा कि दादी ने उनकी प्रशंसा को सुनते हुए उन्हें और आगे बढ़ाया। कभी भी उनको किसी से ईर्ष्या नहीं हुई कि ये आज के आए हुए हैं, हम तो इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं,
अंतिम समय की
इनकी तारीफ हो रही है,
जय जय।
लेकिन बाबा की सेवा में वृद्धि हो और ये आत्माएं बाबा की बनेंगी, बाबा की ये समर्पित होंगी तो यज्ञ कितना उन्नति को पाएगा। दादी ने उनको बहुत अच्छे अवसर दिए,
सब अगर बहुत
सेवाओं में और उनको आगे बढ़ाया। यही हम देखते हैं कि आज इतनी बहनें भाई समर्पित हुए, हमारी सभी दादियों में ये विशेषता थी कि जो भी उनके सामने आए उनसे अधिक योग्य होते हुए भी उन्होंने उनको सदा ही स्वीकार किया और उनको अपने से भी आगे बढ़ाया। जैसे बाबा भी बच्चों को अपने से आगे आगे रखते थे और ऐसे ही नव निर्माण की बात जहां आती है। मेरे से संबंधित एक घटना और मुझे याद आती है कि एक बार शांति वन में भट्टी का कार्यक्रम था, माताओं की भट्टी चल रही थी। तो उस समय मैं दादी जी को क्लास में लेकर के जाती थी, तो मैं लेकर के गई दादी को और जैसे ही मैं बिठाने लगी उनको सोफे पर तो मैंने देखा कि गद्दी जो है वो थोड़ा ठीक पोजीशन में नहीं है। तो दादी के अनुसार मैं उसको ठीक करती हूँ, फिर दादी को बिठाती हूँ। तो मैंने दादी का हाथ उस समय कुछ सेकंड्स के लिए जैसे छोड़ा और मैं गद्दी ठीक करने गई और उतने में ही क्या हुआ कि दादी सोफे पर नहीं बैठे, दादी शायद बैठने गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और दादी जी जो है वो सोफे के नीचे बैठ गए। तो करीब 5,000 माताएं आई हुई थी उस समय और पूरी सभा में हलचल मच गई। मतलब ऐसे ऐसे हुआ कि जैसे दादी गिर गई और मैं भी घबरा गई एकदम उस समय वो दृश्य देख करके। और साथ में दो वरिष्ठ बहनें थे, बैठे थे, जिनको भर्ती कराने के लिए बुलाया था, तो उन्होंने मदद की, दादी को उठाया, ऊपर बिठाया और दादी बिल्कुल नॉर्मल जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। दादी को दादी क्लास कराने आए थे, दादी ने क्लास कराया। मैं थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं कहीं दादी को चोट लगी है, दादी कुछ कहती भी नहीं है। और जब हम वापस आए तो फिर मैं गई मैं कॉटेज में और दादी को मैं सॉरी कहूं कि ऐसा मेरे से कैसे हो गया, मतलब मुझे फील हो रहा था। तो मैं गई और मैंने दादी को कहा ये बात, तो दादी ने कहा कि दादी को तो कुछ चोट नहीं लगी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो। और ये तो बाबा का थैंक्स था कि सचमुच दादी को कुछ भी चोट नहीं लगी थी, वो सिंपल ऐसे ही हुआ था कि दादी सोफे पर बैठने की बजाय जैसे नीचे बैठ गए, जैसे बाबा की मदद ही कहेंगे। तो मतलब मैं बहुत छोटी थी और कैसे मतलब जो भी हुआ और मैं समझ रही थी कि मेरे को बहुत नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, मैंने वो जिम्मेवारी से काम नहीं किया इस तरह से, लेकिन दादी ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। और जैसे कि वो बात आई गई हो गई दादी के लिए, जैसे वो सभा के लिए बहुत बड़ी बात थी, वैसे भी बड़ी ही बात थी ऐसे कि हमारे कोई बड़े ऐसे उनके साथ हो जाए, लेकिन जैसे कि दादी के लिए वो बहुत छोटी सी बात हुई और दादी ने उसको जैसे बिल्कुल खत्म ही कर दिया। और जहां तक नव निर्माण की बात हम देखते हैं तो वो भी दादी के अंदर इतनी योग्यता थी कि दादी ने हमेशा बहुत बड़े स्तर पर सोचकर संस्था को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाया। दादी के समय में ही ओम शांति भवन बना, फिर उसके बाद हॉस्पिटल बना, ज्ञान सरोवर बना, शांति वन बना, इतने बड़े बड़े कैंपस बने, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए और सही समय सीमा में हो गए जो दादी ने तय किया। दादी हमेशा ही कोई भी प्रोजेक्ट जब सामने लाती थी तो उसके पहले ही उसकी डेट निश्चित कर देते थे कि इतने समय में इसका उद्घाटन होना है। और सभी भाई बहनों में उमंग भरने के लिए मैंने देखा दादी खुद भी करने लगते थे, जैसे बाबा भी कर्म योगी बनकर के कर्म करके बच्चों को दिखाते थे। हम सुनते हैं बाबा सब्जी काटने बैठ जाते थे, बच्चों के साथ अनाज साफ करने बैठ जाते थे। तो जैसे ओम शांति भवन में जब पत्थर उठाए गए, क्योंकि वो तो पूरा पहाड़ था तो भाई बहने सभी मिलकर के वो सेवा में सहयोग देते थे, तो कई बार दादी भी खुद खड़ी हो जाती थी, खुद भी पत्थर उठाकर के पास करते थे, तो सब में बहुत उमंग उत्साह बढ़ाता था। तो मैं देखती थी कि दादी रोज चक्कर लगाते थे, क्योंकि कई बार हम दादी के साथ जाते थे, जब मैं दादी के साथ थी, जब शांतिवन बन रहा था, तो मैं देखती थी कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन दादी चक्कर नहीं लगाते, और चक्कर लगाएंगे सबके अंदर वो खुशी वो उमंग आ जाता था कि दादी खुद आते हैं। और उसके बाद जो सेवाओं के प्रोजेक्ट जैसे दादी ने किया, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का प्रोजेक्ट किया, जिसके कारण संस्था को शांति दूत का पुरस्कार मिला, फिर उसके बाद ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, उसके बाद लिविंग वैल्यू, सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े सेवाओं के कार्यक्रम हुए जिसमें अनेक देशों में सेवा केंद्र खुले। तो दादी जी ने सदा ही अपने इस निर्माणता के गुण से, जो दादी में सबको सुख देने का, सबकी सेवा करने का और सबको आगे बढ़ाने का जो गुण था, और उसके साथ साथ जो बाबा के संकल्प थे उनको कैच करके सेवाओं को इतने बड़े स्तर पर लाना, और भी जैसे टीवी के कार्यक्रम भी शुरू हुए, वो दादी के समय में ही शुरू हो गए थे, कई चैनल्स में हमारे ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम शुरू हो गए, और दादी जी के अव्यक्त होने के बाद तो पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू हो गया। तो बाबा ने उस समय कहा था, जो संदेश दिए थे उसमें बाबा ने कहा था कि दादी ने प्रत्यक्षता का बटन अपने हाथ में ले लिया है, और बहुत जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता होगी, और आज मीडिया जो है, जो विहंग मार्ग की सेवा जिसे हम कहते हैं, उससे कितनी सहज और कितना जल्दी बाबा का संदेश करोड़ों आत्माओं तक पहुंच रहा है। तो ये सब दादी जी ने जो प्रयास किए उन्हीं का परिणाम है, और बाबा की हर बात को, क्योंकि अपनी बुद्धि को उन्होंने बहुत स्पष्ट रखा, क्लियर रखा, तो बाबा के इशारे कैच किए और उस अनुसार इस यज्ञ को इस स्तर पर लाया। ओम शांति।
भास पे खिले मन की प्यारी वो। नहीं।